गोपी जन वल्लभागिरिवर धारे जय जय गोपी जन वल्लभागिरिवर धारे जय यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोल
ओम नमो भगवते
कुर्वते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जयमुदीरये। श्रीमद्भागवतम् स्कंद 9 अध्याय 22 और श्लोक संख्या 14 और 15। शान्तिमाप्नोति चेवाग्रया कर्मणा तेन शान्तनो पंद्रह लिखा है, ठीक है। शांतनु ब्रह्मणेरुक्तः परिवेताय मग्रभोक् राज्यं देहाग्रजायाशु पूरराष्ट्र विवृद्धये। शान्तनु ब्रह्मणेरुक्तः परिवेताय मग्रभोक् राज्यं देहाग्रजायाशु पूरराष्ट्र विवृद्धये। शान्तनु ब्रह्मणेरुक्तः परिवेताय मग्रभोक् राज्यं देहाग्रजायाशु पूरराष्ट्र विवृद्धये।
ठीक है,
शांति
इंद्र तृप्ति के लिए जवानी,
अप्रोति
प्राप्त करता है,
च
भी
एव
निसंदेह
अग्रयाम
मुख्यतः
कर्मणा
अपने हाथ के स्पर्श से,
तेना
उसके कारण,
शांतनु
शांतनु
समाह
वर्षो
द्वादश
बारह
तत्राज्ये
उसके राज्य में,
ना
नहीं
ववर्षा
पानी वर्षा,
यदा
जब
विभुः
वर्षा का स्वामी इंद्र,
शांतनु
शांतनु ने
ब्राह्मणे
ब्राह्मणों के द्वारा
उक्तः
सलाह लिए जाने पर,
परिवेता
शोषक होने कारण,
अभयम
यह
अग्रभूक
बड़े भाई के होते हुए भी भोग करते हुए,
राज्यम
राज्य
देही
दे दो,
अग्रजाय
अपने बड़े भाई को,
आशु
तुरंत,
पुरराष्ट्र
अपने घर तथा राज्य की,
विवृद्धे
उन्नति के लिए। अनुवाद ऐसी भक्ति साधु प्रभुपाद जी के द्वारा। चूंकि यह राजा अपने हाथ के स्पर्श से ही सबों की इंद्र तृप्ति करके सुखी बनाने में समर्थ था, इसलिए इसका नाम शांतनु था। एक बार जब राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम अपने बड़े भाई का राज्य भोगने के दोषी हो, तुम राजा अपने घर की उन्नति के लिए यह राज्य उसे लौटा दो। तात्पर्य, अपने बड़े भाई के होते हुए कोई न तो राजा बन सकता है, न अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न कर सकता है, अन्यथा यह परिवेत्ता कहलाता है। श्री प्रभुपाद की।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् विष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवमं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादा सह गण ललिता श्री विशाखान्वितास्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंद वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयो सद्धाम वृंदा काचिदुपासना ब्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न पर। जयतां सुरतों पंगुं मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदां भोजो श्री राधा मदन मोहन। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुंदरवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। इस प्रतिदिन भागवत सत्र में पधारे हुए आप सब वैष्णव का श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज आप सभी वैष्णवों के बीच में कुछ भगवान की गुणगान वैष्णव और साक्षात भगवान के सानिध्य में कुछ गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे सब वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव हैं, यहाँ पर बैठे हैं गुणाकेश प्रभु इत्यादि गुरुदेव प्रभु, उन सबके सामने बोलना क्योंकि उन्हीं से सब सीखे हैं। लेकिन ये हमारी गौड़ीय धारा है जिसमें, और यही हृदय में भाव है कि इन वरिष्ठ वैष्णव के सामने
जो हमारे माता पिता के समान हैं, उनके सामने बैठकर कुछ गुणगान करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे और निश्चित ही आशीर्वाद मिलेगा। इसी भावना से एक प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी वैष्णव के चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं कि आप सब आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कुछ भागवत कुछ गुणगान गिरधारी कर पाऊं। शिष्य गिरधारी हमारे सामने जो है भगवान का एक गिरधारी स्वरूप भक्त वत्सल तथा सूचक, इस गिरधारी नाम से भगवान की बहुत बड़ी लीला है। जो आप सब जानते हैं, भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जन। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इसलिए इनको कोई तत्व से जानता है, बोलता है, गाता है, त्यक्त्वा देहं, इस देह को त्याग करने के बाद न इति, फिर से संसार में नहीं लौटता है, इस संसार के दुखों में नहीं पड़ता है, तो क्या होता है, माम इति, तो मेरे धाम में आ जाता है और जहां केवल आनंद ही आनंद है। तो इसीलिए जब मनुष्य जीवन प्राप्त है, तभी मनुष्य जीवन जब तक है तब तक हमारे जीवन का कल्याण, आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। और इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, किन चीजों से, हम जो जन्म जन्मांतर के कर्मों के चक्कर से संसार में पड़े हैं, उनसे उद्धार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हृदय में जो चित्त है, जन्म जन्मांतर के कर्म से कलुषित हो चुका है, इसलिए उनकी शुद्धि करना बहुत जरूरी है। जब श्री प्रभुपाद जी इस विचार से कि मैं पाश्चात्य जगत में जाकर इस जीवों का जो पाप में पड़े हैं उनका उद्धार करना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी मन में होता था कि कैसे उनका उद्धार करूंगा, जब वो पहुंचे बोस्टन पर और देखा उस शहर को, तो उन्होंने देखा कि चारों ओर लोग अज्ञान से मत्त हैं और नरक के द्वार पर चल रहे हैं, क्योंकि सब लोग पाप में मत्त हैं और इस पाप से सीधे नरक के द्वार की ओर, रास्ते की ओर चल रहे हैं, और इन लोगों को मैं कैसे उद्धार करूंगा। तब उनको भागवत की याद आई कि वास्तव में श्रीमद् भागवत भगवान की विशुद्ध कथा, लीला, सिद्धांत इतने महान है कि इस भागवत के चलते ये लोगों का निश्चित ही उद्धार होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने इस भजन में भी कुछ श्लोक श्रवणताम सकथाम पुण्य श्रवण कीर्तन श्लोकों को कोटेशन किया है। तो यह है भागवत जिसके कारण उद्धार हो सकता है। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं और उनमें से एक लीला है जो गिरधारी जी ने की है, इसलिए उनका नाम पड़ा गिरधारी। भगवान के अनेक अनेक लीलाओं के कारण उनके नाम होते हैं। भगवान कभी माखन चोरी करते हैं तो नाम पड़ता है माखन चोर, माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो वैसे ही गिरधारी की जो लीला है, और भगवान एक कार्य करते हैं तो इस एक कार्य में बहुत सारे कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, एक साथ बहुत सारे कार्य को सिद्ध करते हैं। और इस लीला में भगवान अपनी भक्त वत्सलता को ठीक प्रकार से दिखाते हैं। जैसे इस गिरधारी की लीला की, गोवर्धन धारण किया जब इंद्र ने ब्रज के ऊपर सामर्थक मेघ को बरसाया और ब्रज को नष्ट करना चाहा, तो भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। लेकिन इसके पीछे आचार्य और भी रहस्य देते हैं कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इंद्र के अभिमान को दूर करना चाहते थे, इसलिए इस लीला का विस्तार किया, और दूसरा अपने ब्रजवासी भक्तों को अपने पास बुलाना चाहते थे, इसलिए लीला की। क्योंकि भगवान कितने भक्त वत्सल से इस लीला से पता चलता है। हम देखते हैं कि ब्रज में जब से कृष्ण का जन्म हुआ तो अनेक सारे असुर कंस के द्वारा भेजे जा रहे थे, जैसे पुत्रा, अघासुर, बकासुर इत्यादि। लेकिन उन लोगों ने उतना उत्पात नहीं मचाया जितना इंद्र ने मचाया है, कि नहीं? उतना ही दूध पिलाने के लिए कृष्ण को, और बस कृष्ण ने दूध पिया और साथ साथ उनके प्राण को हर लिया उसी समय में। तो अघासुर, बघासुर, त्रिनावत जो आते थे और कुछ ही मिनटों में भगवान उसको खत्म कर देते। तो उन लोगों ने ब्रज में उतना उत्पात नहीं मचाया जितना इंद्र ने मचाया है ना। इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक ब्रज को उत्पात मचाया, लेकिन उन लोगों को उतना इत्यादि इन असुरों को भगवान ने तुरंत मार डाला, लेकिन इंद्र को मृत्यु दंड नहीं दिया। इसके पीछे रहस्य है, क्योंकि इंद्र भगवान का भक्त है और भक्त कभी भूल कर बैठता है, गलती कर बैठता है, भगवान उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, उसे दंड नहीं देते हैं। तो उस इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने यह लीला रचाई, और इस लीला में इंद्र के मान को भंग कर दिया भगवान ने। तो यह है भगवान की भक्त वत्सलता, कि भगवान अपने भक्त के मान को भी, यदि अभिमान आ गया तो उनको भी दूर करने का उपाय करते हैं। तो वैसे ही भगवान ने इस गिरिराज धरण की लीला की है, और गिरधारी जी हमारे सामने हैं। तो आइए हम इस भागवत में आज जो हम प्रसंग चल रहा है वह चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन, इन अद्भुत जो है चरित्र हैं। जब दशम स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो उभया वंशा नाम सोम सूर्य जो, ये दोनों वंशों का वर्णन मैंने सुना, चरितम परम अद्भुतम, इनका चरित्र परम अद्भुत है, क्योंकि इन दोनों वंश में ऐसे महान महान राजा हुए, महान राजा भक्त हुए जिनके अद्भुत चरित्र हैं, जैसे अम्बरीश, सीबी इत्यादि कई बड़े बड़े राजा, और स्वयं भगवान रामचंद्र भी सूर्य वंश में राजा हुए, दशरथ, रघु इत्यादि बड़े बड़े राजाओं के चरित्र अद्भुत हैं। वैसे चंद्र वंश का वर्णन है जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, आते हैं। तो इस चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन करते हुए कुरु महाराज के वंश का वर्णन करते हुए उनमें ये राजा आते हैं जिनका नाम है शांतनु, जो आज हमारे सामने श्लोक है। शांतनु ब्राह्मणे रूपत, शांतनु जो है वो 3 भाई थे, देवापी, शांतनु और बाहलिक। तो राजधर्म परंपरा के अनुसार बड़े भाई को राज्य मिलता है। उनका जो बड़ा भाई था देवापी, वो देवापी प्रारंभ से ही राज्य को छोड़कर वन में चले गए तपस्या करने के लिए। तो जब देवापी तपस्या करने के लिए चले गए तो जब देवा की तपस्या करने के लिए चले गए तो शांतनु ने राज्य स्वीकार कर लिया, वो राजा बन गए। लेकिन उनका राज्य जब चल रहा था तो उनके राज्य में एक समय ऐसा आया कि 12 साल तक वर्षा नहीं हुई, और 12 साल तक जब वर्षा नहीं हुई तो राजा चिंतित हो गया, क्योंकि राजा का यह धर्म होता है अपनी प्रजा का पालन करना और प्रजा के सुख दुख को दूर करना। तो 12 साल तक वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया। यही एक आदर्श राजा। वास्तव में हमारे इस राज धर्म प्रणाली में जब राजा को कोई कष्ट आता था और कुछ सलाह लेनी होती थी तो ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, क्योंकि ब्राह्मण जो सलाह देता है शास्त्रों से युक्त देता है और उसी में ही जो सलाह लेने वाला है उनका हित होता है, कल्याण होता है। इसे उपदेश मिलता है कि हमारे जीवन में भी हमें कुछ सलाह लेनी हो तो ब्राह्मणों से लेनी चाहिए। और ब्राह्मण की व्याख्या कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और भगवान का भक्त यही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, भगवान को तत्व से जानता है। ऐसे वैष्णव की सलाह लेने से निश्चित हमारा कल्याण, हमारा हित होता है। तो राजा शांतनु ने ब्राह्मणों से सलाह ली और ब्राह्मणों की सलाह से उनको ब्राह्मणों ने कहा कि तुम अपने बड़े भाई को छोड़ करके तुम राजा बन गए हो, और राज धर्म के अनुसार यदि बड़े भाई को छोड़कर कोई विवाह कर लेता है, जब बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ है उससे पहले यदि कोई विवाह कर लेता है और उससे पहले यदि कोई अग्निहोत्र यज्ञ कर लेता है तो उसे उसे दोष लगता है और उसी के कारण उनके राज्य ठीक से नहीं चलता। तो कहते हैं कि तुम्हारा भाई देवापी जंगल में चला गया है, यद्यपि राजा का अधिकार उनका है लेकिन उसके जाने पर तुम राजा बन गए हो, इसलिए तुम्हें दोष लगा है, दोष लगने के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः तुम एक काम करो, अभी तुम जंगल में जाओ और तुम्हारे बड़े भाई को जाकर इनका राज्य लौटा दो। तो वो तो ब्राह्मण की सलाह से जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उस शांतनु के कुछ मंत्री थे, क्योंकि मंत्री का कार्य जो होता है वो अपने राजा का हित करना होता है। ऐसे मंत्री हुआ करते थे जो हमेशा राजा के हित में सोचते थे। तो राजा जब जंगल में जाए उससे पहले मंत्री ने कुछ ऐसे ब्राह्मणों को भेज दिया देवाप के पास कि जो उनको शास्त्र के धर्म से भ्रष्ट करते। तो उस मंत्री के द्वारा भेजे गए जो पाखंडी ब्राह्मण थे वो जब देवापी को मिले और उनको इस वेद धर्म से, शास्त्र धर्म से उनको विमुख कर दिया, और विमुख होने के कारण वो शास्त्र से जब विमुख हो गया, शास्त्र के आचरण से पदभ्रष्ट हो गया तो वो पतित हो गया, और पतित हो गया तो इसके कारण अब राजा को दोष नहीं लगा। और शांतनु के ऐसे आचरण से जो अपने पास राज्य था लेकिन ब्राह्मणों की सलाह से वो राज्य अपने भाई को देने के लिए जा रहा है, उस कार्य से देवता प्रसन्न हुए और इंद्र ने प्रसन्न होकर के उनके राज्य में बारिश बरसाई। इसमें एक सिद्धांत निकलता है कि देवा भी तप करने के लिए गया था लेकिन गलत लोगों के संग के कारण, गलत ब्राह्मणों के संग के कारण वो पदभ्रष्ट हो गए। और दूसरा जो है यद्यपि दोषी था लेकिन शुद्ध ब्राह्मणों का संग करने के कारण वो देवता भी उन पर प्रसन्न हो गए। तो वास्तव में संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और इसीलिए रूपा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सुनना किसी से चाहिए, कैसे ब्राह्मण कैसे वैष्णव से सुनना चाहिए, या तो जैसे भागवत है तो भागवत तो हमारे सामने है कि ठीक से सुना, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसका प्रभुपाद जी ने 3:25:25 भागवत के तीसरे स्कंद 25वें अध्याय और 25वें श्लोक में सदाम प्रसंगान मम वीर्य संविंदो भवन्ति ऋतकरण रसायन कहा तज्जोषणाद स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति रतिर अनुक्रमिष्यते। उस श्लोक के तात्पर्य में प्रबंध में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सदाम प्रसंगा जहां पर भक्त आपस में मिलते हैं तो भवन्ति ऋतकरण रसायन कथा, वहां कथा होती है और एक दूसरे भक्त एक दूसरे से भगवान की कथा जो रसायन है उसे सुनते हैं। उस रसायन को सुनने से क्या होगा, बोले ऋतकरण जब हृदय में जाएगी ये कथा तो श्रद्धा रति भक्तिर अनुपमिष्यते, जिनके अंदर श्रद्धा प्रकट होगी भगवान के गुणों को सुनकर और रति उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, भक्ति उत्पन्न होगी। ऐसे भक्तों से सुनने इसके पर्वत में प्रभुपाद जी इसको क्लियर करते हैं कि वास्तव में भागवत भी हो, भागवत तो वही है जो युग युगांतर से आया है, लेकिन हम किससे सुनते हैं उस पर उनका प्रभाव पड़ता है। यदि किसी अवैष्णवाद किसी अवैष्णव से यदि कथा सुन भी लेते हैं तो वह क्या बनता है, विष बन जाता है, सर्प यथापय विष बन जाता है। इसलिए शुद्ध वैष्णव के मुख से जब भागवत सुनते हैं तो वो मूड प्रकट होता है जो वैष्णव के अंदर है, और इसीलिए हमारे पास जो भागवत है, हम लोग जो भागवत सुनते हैं वो हमारी परंपरा और हमारे आचार्यों के द्वारा उनकी चेतना के साथ दिया गया है, उनके मूड में है। इसलिए इस आचार्य के द्वारा दिए गए भागवत यदि हम सुनते हैं और गुरु परंपरा से वैष्णव से सुनते हैं तो उस कथा के साथ साथ उस वैष्णव के अंदर जो मूड है, जो भाव है भगवान के प्रति, वो हमारे अंदर ट्रांसफर होता है ना। अन्यथा अवैष्णवाद जो गुरु परंपरा से नहीं है और जिनके पास भागवत तो बोल देते हैं, भगवान जी लिखते हैं कि यदि कोई भागवत को पढ़े तो ज्ञान बन जाता है लेकिन भक्त नहीं बनता है। अपने आप यदि भागवत पढ़ लेता है, यदि बुद्धि तेज है तो वो ज्ञान ही बन जाता है लेकिन वो भक्त नहीं बनेगा, क्योंकि भक्त तो तभी बन सकते जब गुरुजनों से और शुद्ध वैष्णव प्रणाली परंपरा से हम इस भागवत को सुनते हैं। रूपा जी वहां पर कहते हैं इसीलिए भागवत को पढ़ने के साथ साथ सुनना चाहिए, और वैष्णव से शुद्ध वैष्णव से जिनके कारण उनकी जो मूड है उनकी जो चेतना है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। अन्यथा यदि बाहर के लोगों किसी से सुनेंगे, किसी ज्ञानी व्यक्ति से जो गुरु परंपरा से या वैष्णव प्रणाली भक्त नहीं है, तो वो सुनकर भी विष बन जाएगा, हम भी पाखंडी बन जाएंगे। इसलिए प्राय यही उपदेश दिया जाता है कि हमारे वैष्णव शुद्ध वैष्णवों के मुख से इसे सुनना चाहिए। इसी प्रकार जब राजा शांतनु ने ब्राह्मणों से सलाह ली तो वो दोष होने के कारण भी शुद्ध हो गया, और वो जो था देवापी उन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों के संग से, यद्यपि वो तपस्या करने चला था लेकिन उनके संग से वो पदभ्रष्ट हो गया और उनका पतन हो गया। इसीलिए हमें सावधान होना चाहिए कि शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि उस शांतनु ने राज्य स्वीकार किया, और उनका शांतनु नाम इसलिए था क्योंकि उनके द्वारा उनके पास ऐसी शक्ति थी, वो जिनको भी स्पर्श करते थे उनको शांति प्रदान करते थे, संसार की सुख और शांति इनके स्पर्श करने मात्र से आ जाती थी। तो ऐसे राजा हमारे इतिहास में है और इनका चरित्र बड़ा अद्भुत है, और आगे चलकर यही राजा कि यहाँ इस शांतनु के और गंगा के संबंध से एक पुत्र हुआ जिनका नाम है देवव्रत, और जिसे आगे चलकर पितामह भीष्म जो महाभागवत हमारे 12 महाजनों में एक हैं, 12 महाजन जो हैं उनमें से एक है पितामह भीष्म, प्रहलाद जनको भीष्म। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म का भी बड़ा अद्भुत चरित्र है, क्योंकि वो एक ऐसे भक्त हैं कि भगवान स्वयं जिनके लिए चलकर वहां पर गए हैं, और भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा यश देना चाहते हैं। इसलिए जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध के पश्चात, युद्ध के पहले अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ कि मैं इन सबको कैसे मारूंगा, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर महाराज को शोक उत्पन्न हुआ, क्योंकि वैष्णव हृदय था, इसलिए वैष्णव हमेशा यही दैन्य प्रकट करते हैं कि वास्तव में ये सब मेरे कारण हुआ। राजा युधिष्ठिर जो साक्षात धर्म का स्वरूप थे दुखी हो गए, मैं अब ये राज्य करने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कारण कितने लोगों की हत्या हो गई, मैंने कितना पाप किया। तब उनको बहुत लोग समझाते थे, जैसे ऋषि मुनि बार बार समझा रहे थे कि हे राजा, आपने कोई पाप नहीं किया है, वास्तव में ये तो सब देव की इच्छा थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। गुरु महाराज तो कहते हैं कि ऋषि मुनि सुबह से उनको समझाना चालू करते थे, शाम हो जाते, दोपहर को भोजन करके फिर से समझाना चालू करते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं रहे। और इतना ही नहीं, कृष्ण अद्भुत कर्मणा, ऋषि मुनि तो समझा रहे थे लेकिन साथ साथ अद्भुत कर्मणा, जिनका कर्म अद्भुत है, ऐसे कृष्ण भी वहां पर थे और वो समझा रहे थे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहे थे। देखिए, भगवान जिसे समझाए और फिर भी यदि न समझे तो फिर वो कैसे समझ पाएंगे, इसका क्या रहस्य है। तब कहते हैं कि वास्तव में भगवान का अद्भुत कर्म है, वो बाहर से समझा रहे थे लेकिन भीतर से समझने देना नहीं चाहते, भीतर से मना करते थे कि तुम मत समझो, बाहर से स्वयं समझा रहे थे। तब जब बहुत समझाते समझाते इसका क्या रहस्य था कि भगवान समझने नहीं देते थे, वास्तव में भगवान का भी अद्भुत कर्म है, भगवान जिसे समझाना चाहे तो रास्ते में बैठकर वो समझा सकते, और भगवान यदि किसी को न समझाना चाहे नहीं समझने देते, क्योंकि भगवान इसके कारण कुछ आगे की लीला प्रस्तुत करना चाहते। जैसे दुर्योधन, यद्यपि दुर्योधन भी धर्म को जानता था, वो कहता है जाना नहीं मैं धर्म न च मैं प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है, क्या करूं, और जाना भी मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है, क्या करूं। क्योंकि हृदय में भगवान ही समझने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो युद्ध चाहते थे इसीलिए, और युद्ध के कारण वो अपने जो इस जीवन का एक उद्देश्य था, जो पाखंडी राजाओं को मारना, ये उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि ठीक है, आप हम किसी से न समझ रहे हो, लेकिन यदि पितामह भीष्म कहेंगे तब तो आप मान जाएंगे ना। तब युधिष्ठिर ने कहा, हाँ यदि पितामह भीष्म कहेंगे तो मैं मान लूंगा। तो भगवान ये बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि वास्तव में मैं स्वयं भगवान हूं, लेकिन मुझसे भी श्रेष्ठ है मेरे भक्त पितामह भीष्म। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर इनके द्वारा समझे, तो भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते। यदि महाभारत के युद्ध में भगवान चाहे तो पल भर में सबको समाप्त कर सकते थे, और महाभारत का युद्ध भी पांडवों ने अपनी शक्ति से नहीं जीता, कृष्ण के होते हुए ही जीता है। यद्यपि बार बार ऐसा प्रसंग है महाभारत में कि ऐसी स्थिति आ जाती थी जहां कोई उपाय नहीं है, लेकिन कृष्ण के कारण ये हो पाता था। यद्यपि अर्जुन की ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो पितामह भीष्म के सामने टिक पाए, ऐसी शक्ति नहीं थी अपने गुरु द्रोण के सामने टिक पाए, लेकिन भगवान उनके साथ थे इसलिए उनको कोई हरा नहीं पाएगा। भगवान जिनके साथ हैं उसी बात को अनुभव करता है अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम चले जाते हैं तब इसी को स्मरण करता है, क्योंकि वो जब रास्ते में चलता है द्वारका से वापस तो एक कोल भील के बालक उनको लूट लेते हैं, तब वो याद करता है कि आज मेरे तो वही धनुष वही बाण है और जिनके द्वारा मैंने महाभारत का इस विशाल सैन्य सागर पर विजय प्राप्त किया था, जिसमें बड़े बड़े किमिंगल थे, पितामह भीष्म कर्ण द्रोण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे, इनको मैंने परास्त किया था, लेकिन ये छोटे छोटे भील के बालकों ने आज मुझे लूट लिया, मुझे परास्त कर दिया। तब उनको स्मरण आया कि हाँ वास्तव में ये सब मेरी जीत इसलिए थी क्योंकि मेरे साथ कृष्ण है। भक्तों, हमारे साथ यदि कृष्ण है तो हर क्षेत्र में हमारी जीत होगी। और प्रैक्टिकल रूप में कृष्ण का अर्थ है इस कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में हरिनाम यदि हम ले रहे हैं तो भगवान निरंतर हमारे साथ में है। हरे कृष्णा भगवान निरंतर हमारे साथ में है। और यदि हमारे जीवन में हमारे साथ में कृष्ण है तो हमारी कहीं भी हार नहीं होगी, यहां तक कि माया से भी परास्त नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण जो है भगवान की शक्ति है, माया जो है भगवान की शक्ति है और वो उनके इशारे पर चलती है। तब इच्छा मते माया करे न श्रृंगार। भक्तिवीर ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हे प्रभु, आप ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, आप ही सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। और तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न, तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और तव इच्छा मते शिव करे न संहार, शिव संहार करते हैं, और आपकी इच्छा से ही माया श्रृंगार कर कारागार माने फासला बनाती है जगत के जीवों पर। और जीव कितनी भी इच्छा करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, अपनी शक्ति से जीव कुछ नहीं कर पाता है जब तक भगवान की कृपा न हो। तो इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्यों के भजनों में देखा गया है कि निरंतर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव होगा, है ना। इसीलिए बताया गया है कि हम इच्छा करते हैं, यत्न करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि भगवान का अनुग्रह न हो तो कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए इच्छा जरूरी है, यत्न जरूरी है, उसके लिए प्रयास करना है, भगवान भगवत प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करना है, लेकिन इसके साथ साथ यदि भगवान की कृपा न हो तो कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए साथ साथ भगवान से प्रार्थना भी करनी है कि आप हम पर कृपा करें। तो इस प्रकार से वास्तव में पांडवों ने भगवान की कृपा से ही युद्ध को जीता था। लेकिन और इस महाभारत के युद्ध में भगवान होते हैं किंतु जीतना संभव नहीं था। इस बात को कुंती महारानी की प्रार्थना में कहती है, उत्तरा भी कहती है। जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे और उस द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने जब एक साथ ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब उत्तरा भगवान के शरण में गई और शरण में जाकर पाही पाही महायोगी देव देव जगतपति आप मेरी रक्षा करें। मान लो कृष्ण ने पूछ लिया कि अभी अभी तुम्हारे जो पितामह हैं पांच पांडव इतना बड़ा युद्ध जीतकर आए हैं तुम उनकी शरण में न जाकर मेरी शरण में क्यों आए। तब वो कहती हैं कि इस संसार में जो है सब लोग एक दूसरे को मार सकते हैं लेकिन बचाने का काम तो केवल प्रभु आप कर सकते हैं। और इसलिए इस प्रकार से कई तरह से देखा जाता है कि कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। और जब अर्जुन को जब मोह हुआ था कि मैं इन सब पितामह है मेरे गुरु है इन सबको कैसे मारूंगा भगवान ने विश्व रूप दिखाया वास्तव में तुम इनको मारने वाले कौन होते हो। ये महाभारत के युद्ध को तो मैंने पहले जीत लिया है यश लभस्व इसलिए उठो अर्जुन और यश को प्राप्त करो बाकी तुम ये मत समझो कि तुम मारोगे तो युद्ध जीतोगे युद्ध मैंने पहले जीत लिया इन सबको तो पहले मार दिया तुमने केवल यश लेना है। भगवान अपने भक्तों को यश देते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भविष्य कह दिया है ग्राम ग्राम नगर ग्राम आदि नगर मेरे नाम का प्रचार होगा तो वो तो होने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करेंगे तो ही होगा वो तो होने वाला है लेकिन हमें चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त कर ले और उस मिशन में जुड़ जाए और उनकी इच्छा को पूर्ण करने में हम अपनी मेहनत लगाएं जिसके द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु हम पर प्रसन्न हों। यद्यपि उन्होंने कहा तो होने ही वाला है हमारे रहने न रहने से नहीं होगा ऐसी बात नहीं लेकिन हमें अपना कल्याण करने के लिए इसको करना चाहिए। ये भगवान अपने भक्तों को यश प्रदान करते हैं जैसे श्री प्रभुपाद जी को दिया यश प्रदान किया और प्रभुपाद जी ने इस यश को लिया वैसे हम सबको भी भगवान जो देना चाहते हैं उसे लेना चाहिए अर्थात सबको इस चैतन्य महाप्रभु की इच्छा भगवान कृष्ण की इच्छा और गुरुजन की इच्छा कि संसार में कृष्ण भावना का प्रचार हो सभी लोग के हृदय में सुषुप्त कृष्ण भावना मृत को जगाना उसे कृष्ण की ओर मोड़ना और यही है बहुत अच्छी सेवा है जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और गीता में भी इस बात को कहे कि जो मेरी इस भक्ति को प्रचार करता है उससे अधिक न मुझे कोई भूतकाल में प्रिय था न भविष्य में होगा प्रिय तरह होगी और अभी कोई है क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है होंगे। तो भगवान यश देना चाहते हैं यश लभस्व महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को यश प्रदान किया अन्यथा युद्ध तो भगवान ने अपनी इच्छा से जीत ही लिया। तो भगवान देना चाहे वही पितामह भीष्म को भी वो यश देना चाहते थे इसलिए वो खुद समझाने पर भी युधिष्ठिर नहीं समझे और फिर वो युधिष्ठिर को लेकर गए कि चलो अब हम पितामह भीष्म के पास जाते हैं। और पितामह भीष्म के पास गए तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया कि युधिष्ठिर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है वास्तव में तुमने ऐसा कोई पाप किया ही नहीं है क्योंकि तुमने यदि ऐसा पाप किया होता तो साक्षात कृष्ण तुम्हारे साथ हैं जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यस्य अनुभाव इनके अनुभव को शिव और ब्रह्मा जानते हैं वास्तव में ये तो तुम्हारे साथ मनुष्य लीला कर रहे हैं तुम्हारे मामा के भाई बन रहे हैं तुम्हारे स्नेही बने हैं प्रेम के वश होकर बाकी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और इनके चलते पाप तुम्हारे पास फर्क नहीं सकता तुम पाप कर ही नहीं सकते। तो वास्तव में ये सब इन देव की इच्छा थी भगवान की इच्छा थी कि युद्ध हो। तब पितामह भीष्म के द्वारा अनेक अनेक इतिहास और कोटेशन शास्त्रों की बातों को समझाते हुए युधिष्ठिर को समझा दिया और युधिष्ठिर ने कहा अब ठीक है। तो ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान यश देना चाहते थे और अंत में पितामह भीष्म के द्वारा बहुत सुंदर भगवान की स्तुति होती है, बहुत सुंदर स्तुति है जिसमें भगवान का गुणगान करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोना स्वसुखम पगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृति मुखेषु यद् भव प्रवाह। जब पितामह भीष्म का अंतिम समय जब चल रहा था और उस समय भगवान कृष्ण उनके सामने गए हैं। देखिए भगवान के कार्य को, एक तो युधिष्ठिर को समझाना है, दूसरा पितामह भीष्म को यश देना है, और तीसरी बार उस पितामह को अंतिम समय में अपने दर्शन भी देने हैं। एक साथ इन सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, इसलिए अद्भुत कर्म कहते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं मेरे भक्त को दर्शन देना चाहता हूँ, और इसलिए कृष्ण वहां पर गए हैं। और पितामह भीष्म ने अंतिम समय में इस प्रकार की स्तुति करने से पहले भी एक श्लोक उच्चारण किया है, हे कृष्ण अब मैंने उपदेश दे दिया युधिष्ठिर को, और अब बिल्कुल समय निकट आ गया है। वो कौन सा समय था? उत्तरायण, है ना, जब सूर्य थोड़ी से अपने रूट को जिस दिशा से चलता है थोड़ा सा उनमें फेरफार करता है, दक्षिण से उत्तर से चलता है, इसे उसको उत्तरायण कहते हैं, और इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। अर्थात धनु राशि से सूर्य मकर की ओर प्रगति करता है, संक्रांति करता है, इसलिए मकर संक्रांत और बड़ा पवित्र समय माना जाता है। उस समय में स्नान की महिमा है, ध्यान की महिमा है, और मरने की भी महिमा है। यदि प्राण भी छोड़ा जाए तो उत्तम गति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे महापुरुष जो पितामह भीष्म, जिनको अपने पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था और इसी के कारण उन्होंने अपने प्राण को रोक रखा था, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस समय उत्तरायण होगी और सूर्य उत्तर की ओर गति करेगा, और साथ ही साथ उस प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि अब कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। और जब ये समय आ गया और जब कृष्ण सामने खड़े हैं तो भक्त प्रेमवश भगवान को भी आदेश दे देते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम मां वरिदम हिनोम्यहम् प्रसन्नहासातृणलोचनोल्लस मुखाम्बुज ध्यानपतश्चतुर्भुज। भगवान को आदेश दे दिया, प्रभु प्रतीक्षताम खड़े रहो, तब तक जब मेरा ये देह न चला जाए, मैं प्राण छोड़ न दूं, तब तक आप प्रतीक्षा करो, खड़े रहो मेरे सामने। और कैसे खड़े रहो, कैसे खड़े रहो, तो कहते हैं मंद मंद मुस्कुराते हो, मंद मंद मुस्कुराते हो खड़े रहो। वास्तव में धन्य है वो मृत्यु, साक्षात भगवान जिनको दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि महाभागवत है और भगवान को प्रिय है, इसलिए भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भीष्म बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्तुति भी है, और इनमें से एक श्लोक है इतिमति रूप कल्पिता। विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर की टीका में कहते हैं कि पितामह भीष्म कहते हैं कि आप खड़े रहिए, मैं मरने से पहले मुझे एक चिंता है। अच्छा क्या चिंता है आपको? बोले इतिमति रूप कल्पिता, मेरी एक कुंवारी कन्या है और उसका विवाह करना है। तो जब ये वार्तालाप हो रहा था तो वहां पर अनेक ऋषि मुनि थे, क्योंकि सब सुनने के लिए आ गए थे। महाभागवत जब प्रवचन करता है तो सब लोग सुनने के लिए आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब पितामह भीष्म ने तो विवाह भी नहीं किया है, तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो उनकी कन्या कहां गई? तो कहते हैं इति मति, मेरी मति रूपी जो कन्या है उपकल्पिता, उनका मैं विवाह करना चाहता हूं। और किसके साथ? बोले इसके लिए एकमात्र योग्य वर हो वो हो आप, क्योंकि मेरी इस कन्या के विवाह करने के लिए कोई योग्य वर है तो हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आप हो। और वास्तव में हमारे मन, हमारी बुद्धि को, हमारी स्मृति को यही कहीं पर लगाना है तो वो उस लगाने के योग्य और उनको सुख देने वाले, मन और बुद्धि को सुख देने वाले हैं भगवान एकमात्र। इसलिए जब हम हमारी बुद्धि और मन को भगवान से लगाते हैं तो मन और बुद्धि दोनों सुख प्राप्त करते हैं। तो उपकल्पिता वित्रिष्णा, और मेरी बुद्धि जो है वित्रिष्णा है, उनका गुण है। तब भगवान की इस स्तुति में एक एक श्लोक में भगवान के सौंदर्य का, भगवान की शौर्य का, भगवान की वीरता का, भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन हुआ है। दूसरे श्लोक में वर्णन हुआ है त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दलाने वपुरल कपुला वितान नाद्यम विजय सखेर तिरस्तु में नमत्यान। भगवान त्रिभुवन कमनम, इस त्रिभुवन में आप एकमात्र सुंदर हो। तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान आपका वर्ण है। इस प्रकार से ये श्लोक जब लिया जाए तो श्लोक की तो बड़ी बड़ी व्याख्या हो सकती है। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने स्तुति की और अंत में भगवान के धाम गए। तो ये है शांतनु के पुत्र, और शांतनु ने उनको ये आशीर्वाद दिया था क्योंकि पितामह भीष्म ऐसे संतान थे जो अपने पिता को, पिता के मन की बात को समझते थे। कई प्रकार के पुत्र होते हैं। एक पुत्र होता है जो मन में आते हैं तुरंत कर देते हैं, पिता के मन की बात को जान जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो कहने पर करते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो कहने पर भी नहीं करते। तो जैसे पुत्र वैसे शिष्य भी, ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु के मन की बात को जान लेते हैं और उसको करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो कहने पर भी, कहने पर कहते हैं कि कहाँ है तो करना पड़ेगा, और तीसरे जो है कहने पर भी नहीं करते हैं। तो वास्तव में श्रेष्ठ शिष्य या श्रेष्ठ पुत्र वो है, श्रेष्ठ शिष्य अपने गुरु के मन की बात को समझ लेते हैं। जैसे भक्ति, जैसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की मन की बात को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास किया, और उसी के कारण उनकी कृपा फल स्वरूप इस कार्य को वो संपन्न कर पाए। तो वैसे पितामह भीष्म एक ऐसे पुत्र थे कि पिता के मन की बात को समझ गए। आप सब लीला को जानते हैं कि शांतनु का मन उस सत्यवती में आया था, और उनके पिता ने शर्त रखी थी कि यदि मेरी कन्या का पुत्र राजा बने तो ही मेरी कन्या हे शांतनु मैं तुम्हें दूंगा। तो राजा चिंतित हो गया कि बड़ा तो देवव्रत है, उसे बिना मैं इनको कैसे राज्य दे सकता हूं। तब राजा ने मन ही मन दुखी हो गए, लेकिन पुत्र तो बुद्धिमान था, अपने पिता की मन को जान गए, और जान करके उन्होंने ये कार्य किया। उस सत्यवती के पिता के पास जाकर कहा कि तुम्हारी कन्या का पुत्र ही राजा बनेगा, मैं वचन देता हूं। तब भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि इसका क्या भरोसा भविष्य में तुम्हारे पुत्र और इनके पुत्र में झगड़ा हो। तब उन्होंने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन भर में कुवारा रहूंगा, जब विवाह करूंगा तब पुत्र उत्पन्न होंगे। तो पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया, और उसी के फल स्वरूप पिता के हृदय से आशीर्वाद निकल गए, और आशीर्वाद दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद देता हूं। और इसीलिए पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु के वरदान है। वास्तव में एक कृपा और आशीर्वाद मिलते हैं कार्य करने से, सेवा करने से। अब मांगते हैं, आपने देखा होगा कई बार, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, लेकिन हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए कि गुरुजन भगवान हमारी ओर देखें। जैसे गुरुजन भगवान हमारी ओर देखें, जैसे भक्ति सिद्धांत सरदेव ठाकुर कहते थे कि वास्तव में भगवान के पास जाने का प्रयास मत करो, सेवा इस प्रकार से करो, कार्य ऐसा करो, भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें देखें, क्योंकि भगवान इस प्रकार देखकर कृपा करते हैं। ये है शांतनु का और इन राजाओं का चरित्र, जिसको सुनकर हमारे हृदय के अंदर भी ऐसी भावना बनती है कि हम भी इस महा जो भागवत है उसी की प्रकार भक्ति में आगे बढ़े, गुरु को भगवान को प्रसन्न करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न तो नहीं होगा? प्रश्न है किसी का कोई? ठीक है। हरे कृष्ण।